Ini petati petati kelas bisa bisa ada. भगवान खुद कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, मनुष्य भ्रष्ट बनता है विष से, काम सबसे महाशत्रु, बाह्य विकार होते ही नहीं। ये भारत मोस्ट बिलीव्ड बाप का बर्थ प्लेस। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा करके फिर डुबो देते हैं, ये सब है अंधश्रद्धा। रावण को जलाते हैं और देवियों के चित्र बनाए पूजा करके डुबो देते हैं। जलाने का और देवियों के चित्र को डुबोने का मेल क्यों बताई दिया? भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है, चाहे रावण का चित्र बनाते हैं, बुत बनाते हैं, उसको जलाते हैं, या देवियों के चित्र बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबोते हैं, ये सब यादगार कहाँ की है? तो रावण का भी चित्र जलाते हैं, बुत बनाकर जलाते हैं, और देवियों के भी चित्र बनाए करके डुबो देते हैं। संगम रूप से क्या इसका कनेक्शन हुआ? हाँ, रावण जो अनेक प्रकार की मत देने वाला है, वो जी को जलाता है अपने बंधन में बांध करके। तो रावण हमारे जी को जलाता है, हम फिर उसका बुत बनाकर जलाते हैं। चित्र कैसे बनाते हैं? जब ज्ञानी की गहराइयों में जाना होता है तो चाहे देवात्माएं हों और चाहे पापात्माएं, सबके चित्र यहाँ क्लियर होते। जैसे मैसूर में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो नाम ही है मैसूर, सूरमन सूर्य, तो जो सूर्य का पार्ट होगा वो जरूर अंधेरा फैलाने वाले को जलाएगा, क्योंकि बोला हुआ है अपनी अपनी कथा कहानियां बैठ करके शास्त्रों में लिखी। तो रावण को जलाने वाली रामायण किसने बैठ लिखी? जरूर ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा ही इसकी निमित्त बनती। द्वापर में वाल्मीकि और कलयुग में तुलसीदास बनते। तो रावण का चित्र चरित्र के आधार पर ज्ञान के तरीके से क्लियर होने लग पड़ता है। रावण का चित्र क्या है? माया रावण का भी कोई चित्र हो सकता है? चरित्र होगा तो चरित्र भी होगा, चित्र भी होगा। चरित्र नहीं होगा तो चित्र भी नहीं होगा। राम का भी चित्र है तो रावण का भी चित्र है। राम भी विचित्र है तो रावण भी विचित्र है। राम का राज्य भी 2500 साल चलता है, रावण का राज्य भी 2500 साल चलता है, लेकिन जब संगम युग में दोनों की प्रत्यक्षता होती है तो रावण को हार खानी पड़ती है। रावण कहा जाता है पांच विकार, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कोई मनुष्य में ही समाये हुए होते हैं। चित्र संपूर्ण का बनता है, अपूर्ण का नहीं बनता। तो संपूर्ण विकारी भी जरूर कोई होंगे 100%। 100% जो विकारी होते हैं वो ही सबसे जास्ती पतित बनते। तो रावण कौन हुआ? विकृति फैलाने वाले, माना विपरीत, कृति माना जो विपरीत कर्म कराए। देवताओं का कर्म है श्रेष्ठ आचरण करना, और आसुरी कर्म है भ्रष्ट आचरण करना। इसलिए मुरली में बोला, आज से 2500 वर्ष हुए जब से रावण का जन्म हुआ। तो आज से 2500 वर्ष पहले कौन सी आत्मा आई? अब्राहिम। लेकिन अब्राहिम तो परम धाम से आने वाली सात्विक आत्मा है। जो परम धाम से आत्मा आएगी उसमें कोई पाप बचा हुआ होगा क्या? हाँ, वो जिसका आधार लेती है उसमें तामसी गुण समाये जाते। तो आधार तो जरूर किसी का लेगी। ततो प्रधान आत्मा पहले जन्म में गर्भ जेल का दुख तो भोग नहीं सकती, इसलिए उसको प्रवेश करना पड़े। तो जिसमें प्रवेश करती है वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा होती है। वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा जिसने अपनी बहुत मनमत फैलाई और दूसरों को ईश्वरीय रास्ते से विपरीत विमुख कर दिया, वही आत्मा द्वापर के आदि में आकर के श्रीमत की वरखिलाफी करने से संगम युग में बहुत कमजोर बन जाती है और 20 जन्म पूरे करने के बाद सबसे जाति कमजोर बनती है। उसी में इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है और उसकी दृष्टि वृत्ति को करप्ट कर देती है। तो यहां से शुरुआत होती है द्वैत की। रावण जब से आते हैं तो आपस में लड़ झगड़ करके अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते। पहले तो भारत में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था। जब इब्राहिम ने प्रवेश किया तो द्वैत होने से आपस में झगड़ा हुआ। जो पक्की देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं थी वो दृष्टि के विचार को सहन नहीं कर सकी, क्योंकि इब्राहिम की सोल को ये पता नहीं होता कि सतयुग में कौन सा शिष्टाचार होता है, तो स्वर्ग में जाती ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करती है उस आत्मा को ऑक्युपाई कर लेती, अपने तरीके से चलाती, और वो आत्मा देवता धर्म की जैसे कि कन्वर्ट होकर के इस्लाम धर्म की माता बन जाती। लेकिन ऊपर से आने वाली आत्मा को रावण नहीं कहेंगे। जिसमें प्रवेश किया वही संगम युग में पार्ट बजाता है रावण का। लेकिन जिसमें प्रवेश होता है वो भी आधारमूर्त आत्मा, उस आधारमूर्त जड़ को भी जन्म देने वाला कोई बीज होता है, और वो बीज होते ही हैं सारे दुनिया के चुने हुए बीज, जिनसे बनती है रुद्रमाला। उस रुद्रमाला में भी लेफ्टिस्ट और राइटियस, 54 राइटियस और 54 लेफ्टिस्ट दो प्रकार के मन के होते हैं। तो जो लेफ्ट साइड के इस्लाम धर्म के बीज हैं, उनका जो मुखिया है वो उस जड़ को भी जन्म देने वाला होता है। यज्ञ के आदि में ही ये बीज रूपात्मा पहले फाउंडेशन डालने वाली बनी। जो बाद में चली गई। मम्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेकर के यज्ञ में आती है और लास्ट सो फास्ट जाती है। जो आधार मूर्त आत्माएं जड़े हैं उनसे भी वो पावरफुल होती है, ज्ञान की गहराइयों में जाने योग्य होती है। तो इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उसके शरीर को जन्म देने वाला जो बीज है वो हुआ मुखिया इस्लाम धर्म। इसी तरीके से हर धर्म के बीज हैं, लेफ्टिस्ट धर्मों के बीज रावण संप्रदाय साबित होते हैं, जैसे कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस जो जब क्रोध में आते हैं एटमिक एनर्जी तैयार कर लेते हैं दुनिया का ध्वंस करने के लिए, लोभी मुस्लिम, लोभ में आकर के इन्होंने वो अत्याचार किए हिंदुस्तान में आकर के जो हिस्ट्री में नुधे हुए, और मोही महर्षि दयानंद का आर्य समाज, उनको मोह लगा हुआ है कि हमारी संख्या बढ़ जाए, जनरेशन बढ़ जाए, हिंदू तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, इसलिए उन कन्वर्ट हुए हिंदुओं को हम फिर से हिंदू बनाए। लेकिन उन्होंने कभी क्वालिटी की परवाह नहीं, हर धर्म की आत्मा को निमंत्रण दे दिया कि कोई भी आकर के हिंदुस्तान में हिंदू बन सकता है। तो जो आत्माएं भारत की कच्ची कमजोर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई थी, धक्के खा रही थी दूसरे धर्मों में, उन्हें कहीं सुख नहीं मिल रहा था, स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म में जाकर के तुक भोग रही थी, वो ही आत्माएं फट से आकर के आर्य समाज में आकर के हिंदू बन जाती, आर्य समाज बन जाती, उन्हीं की कौरव गवर्नमेंट तैयार होती, जिस गवर्नमेंट में कोई दम नहीं होती। तो महर्षि दयानंद का जो जनरेशन बढ़ाने का मोह है वो भी एक विकार, उनका भी कोई मुखिया है और उसकी कोई सहयोगिनी शक्ति है मोह की भी। जैसे पांच विकार हैं रावण के रूप, पांच मुख रावण के रूप, तो ऐसे ही उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी हैं। आधार मूर्त आत्मा है जिसमें ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, तो ऊपर से आने वाली आत्माएं रावण का रूप हुई, या जिनमें प्रवेश किया जाता है वो रावण का रूप हुई, या जिनमें प्रवेश हुआ उनको जन्म देने वाले जो बीज हैं उनके बाप वो रावण का रूप हुए। रावण का रूप किसको कहा जाए? वास्तव में आधार मूर्त आत्माएं जो हैं वो तो माता का पार्ट बजाती है, मंद उदरी कहा जाता है जिनका बुद्ध रूपी पेट मंद है, वो ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझ सकती। जो ज्ञान की गहराइयों को समझने वाली बीज रूप आत्माएं हैं वो ही वास्तव में लेफ्टिस्ट धर्मों की जो बीज रूप बनती है, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन पांच विकारों के असली बीज पुरुष रूप रावण है। और आधार मूर्त आत्माएं जिनको जड़ों पर बैठा हुआ दिखाया गया है झाड़ के चित्र, वो है मंदोदरी माया का रूप। वो सिर्फ मुख से कहती हैं, रावण को समझाती भी हैं कि राम का पलड़ा अच्छा है वही भगवान का रूप है, लेकिन फिर भी फॉलो किसको करती है? रावण को ही फॉलो करती है, क्योंकि कमजोरी है बुद्धि में बड़ी, अनेक जन्मों में कन्वर्ट होने के कारण जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो भले इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाती है फिर भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के मुआफिक वो दूसरे धर्म को ही फॉलो करती है, परमात्मा बाप के वचन को फॉलो नहीं कर पाती। तो रावण भी दुश्मन है, उसको जलाते हैं। कौन जलाते हैं? जो राम संप्रदाय वाले होंगे, राइटियर, वही बुद्ध रूपी क्षेत्र में उनका चित्र तैयार करते हैं ज्ञान के आधार पर कि ये रावण की बीज रूप आत्माएं हैं और ये आधार मूर्त आत्माएं, और उनको संसार में डिक्लेयर करते हैं। अपने आप को भी पहचानना और माया को भी पहचानना, अपने आप को पहचाना, बाप को पहचाना और माया रावण के रूप को न पहचाना तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। तो यहाँ रावण भी दुश्मन बताया, उसको भी जलाते हैं और देवियों के पहले चित्र बनाते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण देवियों को ही समझ लेते हैं कि ये भगवती। अज्ञानता किस बात की? यही अज्ञानता के बाप ने आकर के हमको बताया कि तुम बच्चे इस संगम युग में क्या हो, देवी देवता हो या सेवाधारी हो? सेवाधारी। लेकिन अज्ञानता के कारण सेवाधारी के बजाय हम अपने को राजा और रानी समझ बैठते, और जो भक्त हैं तो भक्ति तो रावण से आती है, वो न राजा समझ कर बैठने वालों को, रानी समझ कर बैठने वालों को देवी और देवता समझ लेते हैं। तो ऐसे देवता गणेश अथवा ऐसी देवियों की पहले तो बहुत मान्यता होती है, लेकिन जब उनका प्रत्यक्ष रूप सामने उभर करके आता है, ज्ञान सागर स्वयं प्रत्यक्ष होकर के उन देवियों के वेश में छिपी हुई राक्षसियों का चेहरा प्रत्यक्ष कर देता है ज्ञान दर्पण, और उन देवताओं के स्वरूप को जो कि बाहर से देवता देखने में आते हैं लेकिन अंदर से राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, उनका भी चेहरा प्रत्यक्ष कर देता है। तो जब ज्ञान सागर में ये सब प्रत्यक्षता होती है तो जो उन देवियों और देवताओं की झूठी पूजा करने वाले हैं वो असली रूप को जान लेते हैं और उनको जाकर के सागर में डुबो देते हैं, उनका मान मर्तबा खलास कर देते हैं। हालांकि रावण को जलाने से या देवियों के चित्र बना करके उनको डुबोने से कोई सुधार नहीं होता है। सुधार कब होगा? जो रावण का पुतला जलाते हैं इसका मतलब है जलाने वाला खुद भी अंदर जल रहा है। देवियों का पुतला बनाया, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़े बड़े अच्छे तरीके से उनको सजाया और फिर बाद में उनको डुबोया। पहले मान मर्तबा देना, फिर उनकी बेइज्जती करना, ऐसे तो यहाँ संगम युग चैतन्य दुनिया की ही बात है। लेकिन ये सब करने की दरकार क्या है? ये सब करने की दरकार तब पड़ती है जब अपने अंदर भी कोई खोट है। किसी को नीचा दिखाने से हम बड़े नहीं बन जाएंगे। दूसरे की लाइन अगर बड़ी है तो हम अपनी लाइन को बड़ा करके दिखा दें। दूसरा जो कुछ करता है उसे करने दो। जब धर्मराज बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, अपने साथ ले जाने का वायदा कर रहा है, तो वारा न्यारा ही करके ही जाएगा। हम ला अपने हाथ में क्यों उठाएं? तो इसलिए बताया कि रावण को जलाना अथवा देवियों के चित्र बनाए फिर उनको डुबोना, ये सब है अंधश्रद्धा। ये कोई भक्ति मार्ग के 63 जन्मों में भी ये अंधश्रद्धा का कार्य हम नहीं करते रहे, लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ये अंधश्रद्धा अभी भी चल रही है। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुना करके बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। कौन? पादरी लोग बहुत मेहनत करते हैं। कौन सी मेहनत करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए देवी देवता सनातन धर्म वालों के शास्त्रों को लेकर के उलट सुलट व्याख्या करने की बहुत मेहनत करते हैं। एक समय सारी दुनिया में रावण राजे, तभी रावण की चींची मत पर है। परम पिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है उनको सर्वव्यापी कह दिए। किसने कह दिया? ये सर्वव्यापी कहने की भी शूटिंग कहां से होती है? ब्राह्मणों की कलमी की दुनिया में तो कोई ब्राह्मण नहीं कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यहाँ तो सब यही समझाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा तो ऊंचे से ऊंचे धाम का वासी है। लेकिन जो समझाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है वो सिर्फ ऊपर ऊपर समझाते हैं। समझाने वाले खुद भी नहीं जानते कि वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी। एक मुकर्र रथ में आकर के सारी शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है परमात्मा पाठधारी के रूप में। और वो मुकर्र रथ कौन सा है इस बारे में उनको भी अज्ञान रहता। जब अज्ञान होता है तो वो अज्ञान बाहर भी आता, स्वयं स्वयं को ही स्वर्ग का रचयिता समझ करके बैठ जाते। एक दूसरे को मत देने वाले डायरेक्टर बनकर के बैठ जाते। अपन को भगवान साबित करते हैं कि हमें ही माला बनाने वाले हैं, हमें ही स्वर्ग का संगठन तैयार करने वाले हैं। तो मनुष्यों का और कोई दुश्मन नहीं है, आत्मा स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु बनती है। माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बात ही आकर के छुड़ाते हैं और कोई तो छुड़ा ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं शरण पड़ी मैं तेरे लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से बचाते हैं, रावण ने कितना तुमको सताया है। बाबा एक बात कहे और रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाबा कहे बाप एक व्यापी है और रावण कहे बाप सर्वव्यापी है। मेरी मत पर चले शिवो हम, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर बुला देता है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, फिर भी माया भुला करके मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना, ये मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कब नहीं भूलना, परंतु कारण या कारण है अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले और दूसरी तरफ है राम की मत वाले। ये कहां की बात, कौन सी युग की बात है? संगम युग पर ही रावण भी प्रत्यक्ष होता है और संगम युग पर राम संप्रदाय भी प्रत्यक्ष होता है। राइटिस्ट भी प्रत्यक्ष होते और लेफ्टिस्ट भी प्रत्यक्ष होते। तो दूसरी तरफ राम मत वाले भी हैं। तुम भगवान की स्वर का वर्षा लो, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये सब मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा ले लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति रखते हैं। के द्वारा? ब्रह्मा द्वारा कई नई शक्ति रची गई है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, द्वारा ही चला गया, मीडिया ही चला गया, नई सृष्टि कहाँ रची गई? कहते हैं चलो माउंट आबू देखो, चल के सुख धाम और शांति धाम, और नई सृष्टि किसे कहा जाता है? सुख धाम को स्वर्ग और शांति धाम को परम धाम कहा जाता है। ये सुख धाम और शांति धाम यही परमात्मा की सृष्टि है। तो क्या ईंटों का शांति धाम और सुख धाम यही परमात्मा रचता है? ये तो भक्ति मार्ग में भी ऋषिकेश में उन्होंने स्वर्ग आश्रम बनाए दिए। तो नाम रख देने से क्या स्वर्ग बन जाता है क्या? लेकिन ये बात गलत है या सही है कि ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं? क्योंकि परमात्मा बाप के वर्षंश, एक एक वर्षंश लाखों रुपए की वैल्यू का बताया, उसमें झूठ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ब्रह्मा भी दो हैं, एक अपूर्ण ब्रह्मा और एक संपूर्ण ब्रह्मा। अपूर्ण ब्रह्मा के चित्र भी नहीं मिलेंगे। पूजा तो न अपूर्ण ब्रह्मा की होती है न संपूर्ण ब्रह्मा की होती है। मंदिर और मूर्तियां न अपूर्ण ब्रह्मा के बनते न संपूर्ण ब्रह्मा के बनते, हाँ चित्र मिलते हैं। गायन है संपूर्ण ब्रह्मा का, संपूर्ण ब्रह्मा को कितने हाथ दिखाए जाते? चार हाथ। तो अपूर्ण ब्रह्मा है दो भुजाओं का, ब्रह्मा और सरस्वती। ये दो आत्माएं जब अपना शरीर छोड़ करके कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है तो संपूर्ण ब्रह्मा तैयार होता है, और उस संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि का सृजन होता है। ब्राह्मणों का नया संगठन तैयार होता है, जिनको कहा जाता है पक्का ब्राह्मण की जन्म। तीन सूत्रों की जानकारी धारण करने वाला ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारी। तीन सूत्र कौन से? ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन? तीनों मूर्तियों का जिसको पूरा ज्ञान जितने बुद्धि ने धारण किया है वही वास्तव में पक्का ब्राह्मण। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता। त्रिमूर्ति शिव जयंती गाई जाती है, एक मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता। यज्ञ के आदि में भी वो तीनों मूर्तियों तीनों मूर्तियां मौजूद होती, जो आदि में होगा वो अंत में भी होता। इसका नाम ही है ओम मंडली, आ ब्रह्मा उ विष्णु म महेश। ये तीन की मंडली है, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। एक बाप के तीन बच्चे हैं, जो इनको अलग करते हैं वो महान अज्ञानता है। ब्रह्मा पार्टी, शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, किसी मुरली में अव्यक्त वाणी में ये पार्टी बाजी नाम दिया? ये नाम किसके दिए हुए? ये नाम दिए जाते हैं अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा, जिनके कर्म कुछ और है और वाचा में कुछ और होता है। कथनी करनी एक नहीं होती, वो ही ऐसी बातें करते थे। तो वास्तव में ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं वो ब्रह्मा होता है संपूर्ण, चार भुजाओं वाला। भुजा माना चार आत्माएं मददगार बने, चार भुजाओं का ब्रह्मा कह दो अथवा चार भुजाओं का विष्णु कह दो, बात एक ही हो जाती है। तो जो नई सृष्टि रचते हैं वो नई सृष्टि वही माला कही जाती है। माला मानव संगठन ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रहते, विष्णु द्वारा देवता थोड़े रखे जाते। रचना किसके द्वारा होती है? 25 नंबर के रजिस्टर में 4387 का कांटे क्लास दूसरे पेज के मध्य में। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची गई। ब्रह्मा को विष्णु बनने में टाइम कितना लगा? एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनता है। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु जैसा उच्च पद पा जाता है, तो ये 60-65 वर्ष का इतना लंबा संगम युग किस खाते में जाता है? वो कौन सा सेकंड है? वो सेकंड है अभ्यास की परिपूर्णता का। राजयोग का भी अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ाई में भी टाइम लगता है, पतित से पावन बनने में टाइम लगता है, आत्मा को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में भी टाइम लगता है। हाँ, कोई की अभ्यास, कोई की दौड़ ऐसी होती है कि लास्ट में एक सेकंड रह जाए तो वो हाई जंप लगा करके आगे चला जाता है। तो दौड़ अपनी अपनी है। ब्रह्मा की सोल के लिए ये विशेष कायन है कि लास्ट सेकंड में उसने ऐसी हाई जंप लगाई कि पतित ब्रह्मा से क्या बन गया? पावन विष्णु बन गया। तो जरूर नंबरवार ब्राह्मण जी इसी लिस्ट में होंगे। ये पुरुषार्थ की रफ्तार की बात है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में एक सेकंड बताने का मतलब ये है कि ब्रह्मा अंत तक बच्चों के साथ रहता है। जैसे अवृत वाणी में बोला है कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन किस लिए रुके हुए? बच्चों के लिए रुके हुए। उनका अपना कोई ऐसा कर्म बंधन नहीं है जिसके आधार पर उनको रुकना पड़े, लेकिन बच्चों के बगैर वापस नहीं जा सकते। तो बच्चों का कर्म बंधन, बच्चों का सहयोग देने के लिए वो कर्म बंधन को भी संघ के रंग से अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। इसलिए वो लास्ट सेकंड अनुभव हुआ है। जो बच्चे विशेष सहयोगी बनते हैं, जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गायब हुई, तो भुजाएं कोई स्थूल थोड़ी है। भुजा माना मददगार आत्माएं। वो मददगार आत्माएं जो मदद करती हैं, उन मददगार बच्चों के बगैर बाप कभी जा नहीं सकता। फिर 1000 भुजाएं ही नहीं है, कम से कम 16000 ब्राह्मण बनते हैं पक्के। आगे पीछे पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले 16000, और पवित्रता ही हमारे ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पुरुषार्थ की गति है। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ किस बात का है? पवित्रता का। तो पवित्रता के लिए जो आत्माएं कटबद्ध संकल्पबद्ध होती है, वो 16000 आत्माओं का राज परिवार जब तक तैयार न हो जाए, वो माला तैयार न हो जाए, तब तक ब्रह्मा बाप भी वापस नहीं जा सकते। और बाप माँ को आगे रखता है। कौन सा बाप? देह के बाप दो हैं, एक मनुष्यात्माओं का बाप और एक आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप कौन? सुप्रीम सोल शिव। वो सब आत्माओं का बाप है। और मनुष्य साकार में होते हैं, ब्राह्मण भी साकार में होते हैं, तो उनका बाप भी साकार में ही होगा। तो मनुष्यों का बाप वो बाप माना राम वाली आत्मा, और दादा कौन? कृष्ण वाली सोल। ये बाप और दादा वाली आत्माएं चाहे तो वापस जा सकती हैं, लेकिन बच्चों के लिए इनको रुकना जरूरी है। बच्चों के बगैर ये बाप दादा वापस नहीं जा सकते। ये सस्ती रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन पहले कैसे वापस चले जाएंगे? तो ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची हुई, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रची, ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची। कहते भी हैं बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, और कहने वाले बैठे बैठे फिर भी गुम हो जाते हैं। कारण अकारण मतभेद में आ जाते हैं, कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो बस भूल जाते। देखो ये ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते, माया भ्रष्ट बुद्धि बनाई देती। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए, बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले लेकर के जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी बरसना के पहनी दुनिया में कोई नहीं। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम भरतू हाथ करके जाएंगे, कौन से हाथ? तुम्हारे बुद्ध रूपी हाथ भरतू होकर के जाएंगे और बाकी सबके खाली होकर के जाएंगे। ये तो सब जानते हैं विनाश होना जरूर है। सब कहते हैं ये वो ही महाभारी महाभारत लड़ाई है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये कोई समझते नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे ही कानों का काल महाकाल कहते हैं। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, मौत सामने खड़ा, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो। क्या मौत भी दो तरह का है, एक तो स्थूल मौत होती ही चली आई 63 जन्मों से, तो सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में मौत कौन सी है? बाप को पहचाना, बाप के बने और फिर बाप का हाथ छोड़ दिया, भूल गए, रावण के बन गए, तो जैसे मौत हो गई। अब ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध ब्राह्मणों की दुनिया में पहले सामने खड़ा है कि बाहर की दुनिया में पहले होगा? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, तो पहले सेक किसको लगेगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सेक लगेगा ना? तो जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो खलास होंगे। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? काल खा जाएगा, मुझे ही काल काल महाकाल कहते हैं। तुम पद ऊंचा ले लो, कैसे? मेरी मत पर चलकर मुझे जानकर मेरे से ऊंचा पद ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, वो भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान फिर सतो रजोतम होंगे। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस, भारत इस समय सबसे नीच पतित है। किस समय है? किस समय सबसे नीच पतित है? जब परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं तब उस समय भारत की क्या हालत होती है? भारत सबसे नीच पतित स्टेज में होता है। अब फिर पावन प्रिंस बनेगा, देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई धर्म में नहीं हो सकता। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने। फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो और सो अहम, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। क्या हुआ? हम सो देवता थे, सो ही हम अब पतित बन गए हैं, भ्रष्ट बन गए, और जो अब हम भ्रष्ट हैं वही हम देवता बनेंगे। हम जीवात्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे, कल हम सो देवता फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डायनेस्टी में जाएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते, परंतु किस किस की बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं है, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। इसलिए गोल्डन एज वर्तन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, परंतु बाबा को अंदर से ऐसे ऐसे याद करना है जो अंत मते सुगति हो जाए। मुख से बाबा कहें वो तो 63 जन्म मुख से कहते आए, और अंदर से पहचानी नहीं थी तो याद कहां से आएगा। अभी मुख से कहना बंद, अंदर में जैसे गीत बजता है। बाप की मत बुद्धि के अंदर घूमती तो अंत मति सुगति हो जाएगी। कैसी मति? अंत में कैसी मति हो जाए? मन मना भव, मन मना भव, ये 3 अक्षर हैं। कौन कौन से 3 अक्षर? मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समाज। मन में मेरे समाज है, इसका क्या मतलब हुआ? मेरे मन के अंदर जो संकल्प है उन संकल्पों में तू अपने संकल्पों को डुबा दे, यानी जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। संकल्प मात्र भी कहीं विरोधाभास न हो, वाचा में विरोधाभास और कर्मों में विरोधाभास ये तो बहुत दूर की बात है। संकल्प मात्र भी बाप और बच्चे के संकल्पों में भेद न हो, एक जैसे संकल्प हो तो कहेंगे मन मना, तो हो जाएगी अंतमति सुगति। अंत में जिसकी ऐसी मति होगी, परमात्मा बाप के ही संकल्प उसकी बुद्धि में फिरेंगे, तो दूर लंदन में बैठे भी बाप के संकल्पों को वो कैच कर सकेगा। देहभान को छोड़, अपन को आत्मा समझ। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं। बड़े से बड़ी भूल ये है जो एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, और दूसरी तरफ कहने लग पड़ते पतित पावन गंगा। क्या कहा? पतितों को पावन बनाने वाला एक होगा या अनेक होंगे, या तो कहो कोई पतित पावनी गंगा, लेकिन गंगा तो पानी की होती है, पानी किधर जाता है? गंगा का पानी ऊंची स्टेज से आता है, सागर से आता है, पहाड़ पर ऊंची स्टेज पर गंगा का जल तैयार होता है और कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। गंगा का जल हमेशा नीचे की तरफ ले जाने वाला होता है। और कहाँ पहुंचती है गंगा फिर लास्ट में? सारा कचरा इकट्ठा करके कहाँ पहुंचती है? सागर में पहुंचती है। सागर में जब गंगा पहुंचती है तो खुद भी शुद्ध और पवित्र बनती है, और उसके अंदर जो कचरा है वो भी शुद्ध और पवित्र बनता है, या तो सागर में समा जाता है। तो नदी असली नदी वो है जिसका सागर से कनेक्शन है। सागर से कनेक्शन होगा तो ऊंची स्टेज में होगी, और सागर से अगर संबंध जुटा हुआ नहीं है तो नदी भी नाला बन जाती है, कचड़े को बहन करने वाली। दृष्टि वृत्ति का कचरा उसमें इकट्ठा होता रहता है, उससे पतित पावनी नहीं बन सकती। क्या बनाएगी? पतित ही बनाएगी। तो गंगाएं कोई पतित पावनी नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला सिर्फ एक गाया हुआ है। लाखों स्नान करने जाते हैं, उन सबको समझाना है भगवान वाद। ये जो तुम यज्ञ तप दान आदि करते हो, इनसे मेरे को नहीं मिलते। क्या गंगा के किनारे जाकर क्या क्या करते हैं? बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं, तपस्या तपते हैं, बहुत दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन इनसे मेरे को कोई प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सब इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट जो कुछ भी करते हैं उससे एक जन्म की प्राप्ति होती है, और डायरेक्ट बाप के प्रति जो कुछ भी करते हैं उससे 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। तो अभी तुम मेरे बनो, अभी तुम एक दंपतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आया। माना पास आने का मतलब क्या हुआ? बाप के नजदीक पहुंचना, जो बाप का पुरुषार्थ, जो बाप का संकल्प, जो बाप की बुद्धि, उस बुद्धि तक पहुंचना। नाटक में पिछाड़ी सब एक्टर्स को रहना होता है, जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। 500 करोड़ आत्माएं हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से कोई निकल नहीं सकता। स्थापना करने वाले भी यहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं। क्या कहा? असली स्थापना करने वाले कौन हुए? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, जिनका एक दो जन्म कम हो जाएगा वो स्वर्ग की स्थापना के सहयोगी नहीं बन सकेंगे। वो अपने अपने धर्म में कन्वर्ट होने वाले विधर्मी हैं, वो कम जन्म लेंगे, बाप की पूरी बात न समझेंगे और न दूसरों को समझा सकेंगे, और नई दुनिया का फाउंडेशन लगा सकेंगे। झाड़ को जड़-जड़ अवस्था को पाना ही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की, बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहां धोखा न दे दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। जैसे मुर्दे का मुंह फेरते हैं, पहले किस तरफ मुंह होता है? पहले शहर की तरफ मुर्दे का मुंह होता है, फिर जब शमशान घाट में पहुंचते हैं तो शहर की तरफ पांव कर देते, लात कर देते और मुख कर देते शमशान घाट की तरफ। तो जब दुनिया बदलनी होती है, खास करके ब्राह्मणों की दुनिया, तो क्या करते हैं, मुख घुमाया जाता है। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बनी पड़ी है, सब मुर्दे बने पड़े, उन मुर्दों का मुख घुमाया जाता है। क्या चक्र घूमता है, जब चक्र घूमता है तो नीचे की ओर ऊपर और ऊपर की ओर नीचे पहुंच जाती है। तो मुख घुमाने का मतलब क्या हुआ, जो देह और देह के संबंधी, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जिनमें बुद्धि लग जाती है, उनसे बुद्धियों को तोड़ाए के एक शमशान घाटवासी जो बाप की तरफ बुद्धियों को लगाया जाता है। शिव के मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं, शहर के अंदर या शहर के बाहर? अक्सर करके शमशान घाट में शिव के मंदिर होते हैं, शहर के बाहर। इस दुनिया से बुद्धियोग तुड़वाना और बाप से बुद्धियोग लगवाना, ये हुआ मुर्दे का मुख फेरना। बाबा कहते हैं तुम अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, शांति धाम और सुख धाम बुद्धि में रहे, लात नरक की तरफ। जो दुनिया भस्म होने वाली है उसको बुद्धियोग से लात मारो, और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उस तरफ अपनी बुद्धि का योग रखो। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया हुआ है, कैसा है, हाथ में बुद्धि रूपी हाथ में है स्वर्ग का गोला, माने नई दुनिया की सारी प्लानिंग उसकी बुद्धि में भरी पड़ी है। बुद्धि रूपी हथेली में तीरी पर बैठ जो दिखाया है, इसका मतलब है कि बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया की सारी प्लानिंग है। किसकी बुद्धि में? ब्रह्मा बनाम कृष्ण की सोल, जिस किसी भी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पार्ट बजाती है तो उसकी बुद्धि में नई दुनिया की सारी प्लानिंग आ जाती है, और पुरानी दुनिया को क्या करता है, लात मार देता है, क्योंकि अब उस दुनिया में आग लगने वाली है। जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी लोकलाज की परवाह नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी होती है, और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है उसके लिए ज्यादा तवज्जो देनी होती है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर वन गोरे बनते हो। कौन बनता है श्याम सुंदर? वही कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके श्याम से श्याम पार्ट बजाती है और सुंदर से सुंदर पार्ट बजाती है। जो काले तमो प्रधान है, दुखदाई है, उनके लिए श्याम पार्ट बजाती है, और जो सुखदाई है देवात्माएं हैं उनके लिए सुंदर पार्ट बजाती है। एक ही व्यक्तित्व में दोनों प्रकार के पार्ट मिलेंगे, श्याम से श्याम, काले से काला और गोरे से गोरा। इसलिए बोला है ऐसा श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं होता। तब कहते हैं मनुष्य से देवता की करत न लागी वार, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना बाप का काम है, ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर के राजी करेंगे, इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं है। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वो तुम ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, इसकी ईश्वरी है, ज्ञानियों की ईश्वरी, ज्ञानियों को कंट्रोल करने वाली, ईश माना शासन करना, ईश्वर माना शासन करने वाला, ईश्वरीय माना शासन करने वाली। किसका शासन करने वाली? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर जाकर के राज राजेश्वरी बनेगी। ये नॉलेज है ही राजयोग की। राजयोग से क्या मिलता है? राजयोग से मिलता है विश्व की बादशाही। तो बाप से पहले पहले विश्व की बादशाही कौन लेता है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है मम्मा, जिसको कहते हैं जगत अम्बा। तो जगदम्बा को बाप से विश्व की बादशाही मिलती है और फिर जगदम्बा से सबको मिलती है। तो ऐसे कॉलेज में कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता, इसलिए पूरा ध्यान रखो, मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जितना तकदीर में होगा तो वोट पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर के भाषण करो, शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है। कौन से मंदिर में जाकर के भाषण करना है? शिव बाबा के मंदिर कौन से हैं? है? वो जड़ मंदिरों की बात नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी मंदिर हैं, सारे ही नहीं, जहां सिर्फ शिव की मान्यता है। एक बाप शिव ज्योति बिंदु को बेसिक नॉलेज के आधार पर याद करने वाले, किसी देहधारी में फंसने वाले नहीं है। ऐसे सेंटर में जाकर के उनको परिचय दो, बताओ कि शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है। आया है, ऐसे नहीं आकर के चला गया है, लेकिन आया है। बहुत सुनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। तुम जब सुनाओगे कि बाप आया हुआ है तो माया क्या करेगी? माया रावण लड़ाई करेगी, बाप है ही नहीं। तुम कहोगे बाप आया हुआ है, वो कहेंगे नहीं। तुम कहोगे बाप एक व्यापी है, मुकर्रर रथ में आता है, जो आदि में मुकर्रर सो अंत में मुकर्रर, बाकी बीच में टेम्परेरी है। तुम कहोगे कि मुकर्रर रथ में एक में आया हुआ है एक व्यापी बनकर, वो कहेंगे नहीं, बाप तो सर्वव्यापी। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा करता है, कल गुम हो जाता है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी, नशा कब करता है? बाप के ऊपर विश्वास निश्चय धारण करते हैं तो नशा डर जाता है, और माया के बनते हैं तो नशा गुम हो जाता है। हम ये पुराना शरीर छोड़ा, अब नई दुनिया में जाकर के पैर धरेंगे। अब ये दिल्ली परिस्थान होगी। कौन सा स्थान? परियों का स्थान। परियां क्या करती है? परियों को होते हैं ज्ञान योग के पंख। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियों का स्थान बनेगी। अब परिस्थान में जाने के लिए गुलगुल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग कहते बच्चों के प्रति। जो मीठे मीठे बच्चे हैं और सिकिल दे हैं, बहुत लंबे समय के बाद बिछुड़ करके अंत में मिले उनके प्रति, इसका याद प्यार गुड मॉर्निंग, माता पिता का और फिर बाप दादा का, ये शब्द अलग अलग है क्या? इनका अलग अर्थ है क्या? बाप दादा होते हैं कंबाइंड, एक ही शरीर में दो, बाप भी और दादा भी, और माता पिता, मात जब कहा जाता है तो जरूर फीमेल चाहिए, पिता जरूर मेल चाहिए। भारत में माता पिता का गायन है, राम सीता के मंदिर में जाएंगे तो भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, और शिव पार्वती के मंदिर में जाएंगे तो भी कहेंगे क्या तुम माता पिता हम बालक, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। बात कहाँ की? बात है अभी संगम युग की। संगम युग में ही परमात्मा बाप आकर के माता और पिता रुद्रमाला के जो फर्स्ट दो मण के हैं उनमें प्रवेश करके ये कार्य करते, माता भी बनते तो पिता भी बनते। तो माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नहीं, नमन नहीं करते बाप दादा और न माता पिता नमन करते, क्यों? माता पिता नमन क्यों नहीं करते? नमन माना माथा झुकाना, माथा क्यों नहीं झुकाते है? बच्चों की बुद्धि बड़ी होगी कि माता पिता की बुद्धि बड़ी होगी? बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों को माता पिता की मत पर चलना है या माता पिता को बच्चों की मत पर चलना है, कौन किसको माथा झुकाए? जरूर बच्चों को ही झुकाना पड़ेगा। बच्चे अप एंड डाउन में आते हैं, माता भी आती है लेकिन माता की गारंटी बाप की है, और बाप कभी अप एंड डाउन में नहीं आता। तो बच्चों को माता पिता को